ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 37। कृपया दोहराइए। सम विषम मतिनाम मतं मनुसरसी यथा रज्जु खण्डः सर्पादि धियां। सम समान या उचित, विषम असमान या अनुचित, मति नाम बुद्धिमानों का, मतम निष्कर्ष, अनुसरसी पालन करते हो, यथा जिस प्रकार, रज्जु खंडह रस्सी का टुकड़ा, सर्पादि सांप इत्यादि, धियाम देखने वालों का। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। अनुवाद। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही जानता है। इसी प्रकार सबों के हृदयों में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भिकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं अद्वैत हैं। तात्पर्य। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में मेरी शरण में आता है, मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। श्री भगवान समस्त ज्ञान सत्य तथा समस्त विरोधों के आगार हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सार्थक है। रस्सी का होना एक सत्य है, किंतु कुछ लोग भ्रम से इसे सर्प मानते हैं, तो दूसरे लोग इसे रस्सी ही समझते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो लोग श्री भगवान को जानते हैं, उनमें विरोधों को नहीं देखते, किंतु जो अभक्त हैं, वे उन्हें सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। उदाहरणार्थ, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप में देखा। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम् द्वितीयामिति वेष्यतः स्यात्। जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है, तभी वह भय तथा आनंद दोनों को जानता है। वही भगवान भक्तों के लिए आनंद का स्रोत हैं और ज्ञान विहीन अभक्तों के लिए भय का। ईश्वर एक है, किंतु लोग उसे विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। अज्ञानी उसमें विरोध पाते हैं, किंतु शांत भक्तों को कोई विरोध नहीं दिखता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवतम का ये छठा स्कंद जहाँ वृत्रासुर की कथा का वर्णन हो रहा है, इस नवे अध्याय में वृत्रासुर का प्राकट्य होता है या आविर्भाव होता है। ये नवा अध्याय चार भागों में बांटा जा सकता है। इसमें 55 श्लोक हैं और इन श्लोकों में पहले 10 श्लोक वर्णन करते हैं कि किस प्रकार इंद्र विश्व रूप की हत्या कर देते हैं और फिर अपने पाप को बांट देते हैं। 11वें श्लोक से 20 श्लोक तक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वृत्रासुर प्रकट होता है और वो देवताओं पर आक्रमण करता है। और फिर आगे 21वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक वर्णन ये किया गया है कि किस प्रकार देवता जब आक्रमण हुआ उन पर तो वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोनों प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन है। भगवान के प्राकट्य के पहले, प्रकट होने से पहले वो करते हैं, फिर भगवान जब सामने प्रकट हो जाते हैं तो उनको देखकर फिर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो ये 45वें श्लोक तक वर्णन है। और फिर 46वें श्लोक से अंत तक अर्थात 55 श्लोक तक भगवान निर्देश देते हैं देवताओं को। तो बहुत सुंदर निर्देश हैं भगवान के। भगवान उपदेश देते समय भी एक दृष्टि से थोड़ा सा देवताओं को डांटते हैं या कहते हैं कि आप मेरे भक्त नहीं हो। सीधे नहीं कहते, वो देवताओं से कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो ये कुछ भौतिक चीजें नहीं मांगते मुझसे जो आप मांगने आए हो। तो इस दृष्टि से उन्हें कह देते हैं कि अगर आप मेरे भक्त होते तो मुझसे ये नहीं मांगते, लेकिन फिर भी मांगा है तो भगवान दे देते हैं। ये जरा किसी को शांत कराएंगे, थोड़ा पीछे। आपसे विनती है कि प्रवचन के समय शांत रहें और अपने अपने मोबाइल को भी शांत रखें। वैसे हम बोलना भूल गए, मोबाइल बंद रखने वालों की जाए। मोबाइल भी बंद रखिए थोड़े समय के लिए। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है और ये जो विभाग हम लोग अब पढ़ रहे हैं, इसमें देवताओं की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े सुंदर उपदेश हमें मिल रहे हैं। प्रतीत हो रही हैं दिखने में कि देवताओं की प्रार्थना है, देवता भगवान से कह रहे हैं आप ये हैं, आप वो हैं, आप बड़े महान हैं, आप ये कार्य करते हैं, लेकिन हर श्लोक में, हर प्रार्थना में ये बहुत सुंदर उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है। वैसे देखा जाए तो ये सारा प्रसंग वृत्रासुर का ये हमें बहुत से उपदेश देता है। भागवतम इसलिए नहीं सुनी जाती कि केवल हमें सुनना है या फिर नियम है। भागवतम सुनी जाती है कि कैसे हम उसको जीवन में उतार सकें, क्या हम सीख सकें। हर रोज जब हम भागवत की कक्षा में बैठें तो हमें ये भाव में बैठना चाहिए कि आज मैं जीवन के लिए क्या सीख कर जा रहा हूं यहां से, ये हमारा भाव होना चाहिए। और भागवत का हर शब्द, प्रभुपाद के अनुवाद, प्रभुपाद के तात्पर्य हमें जीवन के लिए बहुत सी शिक्षाएं देते हैं। तो वैसे तो केवल प्रभुपाद का अनुवाद और तात्पर्य सुन लेना ही काफी है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने ही नियम बनाया कि थोड़ा सा और विस्तार से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए भागवत का श्रवण बड़े ध्यानपूर्वक होना चाहिए। जब कथाएं हों जिनमें बड़ी रुचि आती है तो उनको भी बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। जब ऐसे सिद्धांत प्रकट हों भागवत में तो उसको भी जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग केवल भागवत को कथा के रूप में लेते हैं कि कथा हो तो आनंद आता है, ये सब ये जो सिद्धांत आ गए हैं ये कहां से रस्सी है और वो क्या दिखता है सब, ये सब नहीं होना चाहिए। दोनों जीवन के लिए उपयोगी है। तो इसीलिए बहुत से उपदेश इस प्रसंग में हमें मिलते हैं। पहला उपदेश जो हमें इस प्रसंग में मिलता है वो ये है कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध पतन का कारण बनता है। इंद्र ने अपराध किए तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, ये पहला। ऐसे बहुत से संदेश हैं, ये तो कथा में बहुत विस्तार से होने चाहिए, लेकिन जितना समय है इसीलिए संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि आज के जो श्लोक है इसके संदेश को भी सुनना चाहिए, वर्णन करने की इच्छा है। तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, ये पहला संदेश इससे सीखते हैं। दूसरा संदेश आता है कि जो ऊंचे पद पर हैं, नेता के पद पर हैं, उन्हें कैसे सही आचरण करना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तीसरा संदेश जो बड़ा महत्वपूर्ण हमें मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर शरीर को भी देना पड़े, जैसे अब हम लोग इस अध्याय के आगे में देखेंगे, दधीची धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे देते हैं, शरीर को दे देते हैं, तो अगर धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने शरीर का भी त्याग करना पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये प्रसंग हमें उपदेश देता है कि कैसे ब्राह्मणों की, भक्तों की कृपा पर हमारा जीवन आश्रित होना चाहिए। भक्ति का मार्ग यही है, अपने बल पर भक्ति नहीं होती। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं कि मैंने अपने बल पर भरोसा छोड़ दिया, भरोसा छाड़ी है, मुझे कोई भरोसा नहीं है। किस पर है? आप पर है। तो भक्तों की कृपा पर हमें विश्वास होना चाहिए। और बहुत सुंदर, ऐसे तो बहुत सारे उपदेश हैं। एक उपदेश हमें और मिलता है कि सही में विजय क्या है। जब युद्ध होगा इंद्र और वृत्रासुर का, तो उसमें वृत्रासुर इस बात को प्रकट करते हैं कि सच्ची विजय क्या है जीवन में। इंद्र तुम सोच रहे हो कि तुम ये युद्ध जीत कर विजयी हो जाओगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये युद्ध हार कर विजयी हो जाऊंगा। तो इसीलिए सच्ची विजय क्या है ये इस प्रसंग में आएगा। और फिर वृत्रासुर के उदाहरण से, ये कुछ भागवत के उदाहरण हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे इस जगत को छोड़ना चाहिए। इस जगत को छोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण या गुणगान करने योग्य मार्ग ये हमें वृत्रासुर सिखाते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और जैसे हमने बताया कि हर प्रार्थना भी एक प्रसंग, एक उपदेश को हमें दे रही है, तो जब हम इस भाग में आते हैं, जैसे हमने बताया चार भाग में ये अध्याय बटा है, अभी जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है प्रार्थनाओं की। भगवान प्रकट हुए हैं और देवता प्रार्थना कर रहे हैं उनके प्रति। तो इस प्रार्थना में जो आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा गया है। क्या विषय है? यह कहा जा रहा है कि भगवान स्वयं अद्वैत हैं। अद्वैत मतलब उनमें कोई द्वैत नहीं है। द्वैत यानी दोहरापन कहना चाहिए, या द्वैत याने स्थिति को समझ ना पाने की स्थिति भावना, कि हम ऐसी स्थिति में हो जहां यहां जाना है या वहां जाना है। जैसे कहते हैं ना, दो राहे पर खड़े होना। तो द्वैत मतलब कि ऐसी स्थिति जहां सही क्या है गलत क्या है उसको चुन पाने की हमारे अंदर क्षमता ना हो, या दो ऐसे मार्ग हो जिन्हें चुनने के लिए हमारी बुद्धि काम ना करे। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान आप तो अद्वैत हैं, आप में कोई द्वैत नहीं है, लेकिन आप जीवों में द्वैत उत्पन्न करते हैं उनकी बुद्धि के अनुसार। तो कैसा द्वैत उत्पन्न होता है, कैसा दोराहे उत्पन्न होती हैं, क्या क्या है हमारे जीवन में ये द्वैत का महत्व, तो यहां ये वर्णन किया गया है। प्रभुपाद समझाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि जैसे आप मेरी तरफ आते हो, मेरे पास आते हो, जिस भाव में आते हो उसी भाव में मैं आपके साथ आदान प्रदान करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आप अगर रस्सी समझ रहे हो तो वो रस्सी की तरह प्रकट होगा, सांप समझ रहे हो तो हृदय में रस्सी ही सांप का भय प्रकट कर देगी। तो ये जो भय है, ये जो द्वैत है, ये हमें इस जगत में बांधे रखता है। अर्जुन को भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये तीन गुणों का वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तो अर्जुन तुम्हें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का मार्ग क्या है? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं द्वंदों से परे जाओ। जब तक द्वंदों में रहोगे, ये करना है वो करना है, हार जीत शत्रु मित्र, जब तक इन द्वंदों में रहोगे तीन गुणों के ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ हो, ऐसी अवस्था में, ऐसी शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था में अपने आप को स्थित करो जहां ये भौतिक जगत का लक्षण प्रभाव नहीं करे। नित्य सत्वस्थ हो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम मतलब ये जो लाभ की चिंता है इस जगत में हमें, सुरक्षा की चिंता है इस जगत में हमें, उससे परे हो। निर्योग क्षेम, हम लोग इस जगत में यही करते हैं, क्या लाभ मिल रहा है और कहां मेरी सुरक्षा है ना? सुरक्षा की चिंता हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि वो बहुत सुरक्षित रहना चाहता है। ऐसा वैरागी भी जो सब कुछ त्याग देता है उसको भी सुरक्षा की चिंता हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। वैरागियों को सुरक्षा की क्या चिंता होनी चाहिए? सन्यासियों को ये नहीं सोचना चाहिए भोजन कहां मिलेगा। लेकिन जो तथाकथित सन्यासी हैं, जो तथाकथित वैरागी हैं, जो सही मार्ग का पालन नहीं कर रहे, केवल अपने जीवन को चलाने के लिए वे सन्यासी बने हैं, तो ऐसे लोगों को डर रहता है कि कल क्या होगा, भय। तो इसीलिए निर्योग क्षेम आत्ममान, हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। तो कैसे वो स्थिति आ सकती है? तो यहां जिन द्वंद्वों का वर्णन किया गया है, तो कैसे हम द्वंद्वों से परे जा सकते हैं? तो द्वंद्व उत्पन्न कहां से होते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे मन में ये द्वंद आते हैं? मन कारण है। मन परम कारण मामनन्ति, मन से ये द्वंद प्रकट होते हैं कि मुझे ये चाहिए, नहीं ये भी चाहिए, ये प्राप्त कर लो। तो इन द्वंद्वों को प्रकट करने वाला मन है, और मन को जीतना बड़ा आवश्यक है। भागवत में जब प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है, और हिरण्यकश्यपु का प्रभुपाद यहां तात्पर्य में भी प्राकट्य का नरसिंह देव का कह रहे हैं कि कैसे हिरण्यकश्यपु ने देखा नरसिंह देव को और कैसे प्रहलाद ने देखा। तो प्रहलाद और नरसिंह देव जब दोनों भगवान के भक्त और भगवान प्रकट हुए, तो प्रेम का आदान प्रदान हुआ, लेकिन हिरण्यकश्यपु और नरसिंह देव भय का आदान प्रदान। तो जब हिरण्यकश्यपु का वर्णन भागवत में किया जाता है, तो क्या किया जाता है कि हिरण्यकश्यपु ने सारी दिशाओं को जीत लिया, लोगों को जीत लिया, लेकिन अपने अंदर के शत्रु को वो जीत नहीं पाया। इसीलिए द्वैत से परे जाने का मार्ग है अंदर के शत्रुओं को जीतना। एक युद्ध हमारा होता है जो हम बाहर करते हैं, जैसे अर्जुन, अर्जुन ने भगवद गीता में दो युद्ध लड़े, एक युद्ध जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा था, जहां अर्जुन को अपने रिश्तेदारों को मारना था, भाइयों को मारना था इत्यादि। दूसरा युद्ध जो अर्जुन हार गया, वो था उसके मन का युद्ध, आंतरिक युद्ध, अपने अंदर बैठे शत्रुओं को मार नहीं पाया, और इसीलिए समर्पण करना पड़ा श्री कृष्ण को कि मैं मार नहीं पा रहा हूं। अर्जुन कह रहा है मैं भ्रमित हो गया हूं, ये जो मेरे अंदर बैठे शत्रु हैं, इनको मैं जीत नहीं पा रहा हूं। इसीलिए सच्ची विजय जीवन में क्या है? कोई बाहर की युद्ध जीत लेना नहीं, कुछ बहुत चीजें पा लेना नहीं। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, तो देखते हैं कि जो बंदर है वो कभी कभी कोई बहुत ऊंची जगह पर चला जाता है, एकदम ऊंचे बैठता है जाकर, और सोचता है कि मैंने जीत लिया सब। देखते हैं आप ऊपर बैठकर इधर उधर देखता है, या फिर कभी आकर वो ऊपर जोर जोर से ऐसे कूदता है और फिर इधर उधर देखता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। तो वो भी जीतता है, मान लीजिए मंदिर का बहुत बड़ा हमारा जो शिखर है उसके ऊपर चला जाता होगा, और ऊपर बैठकर देखता होगा कि मैं अब विजेता हो गया, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। यही हमारी स्थिति है। जब हम बंदर को देखें तो हमें अपना ध्यान करना चाहिए, बंदर हमें सिखला रहा है, क्योंकि जब भगवान हमें देखते हैं तो हमें ऐसे ही प्रतीत होते हैं, भगवान भी हमें हमारे लिए ऐसे ही सोचते हैं जैसे हम बंदरों के लिए सोच रहे हैं कि मूर्ख सोच रहा है कि कुछ प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ उसे, बंदर ऊपर चला गया उसको क्या प्राप्त हुआ। आप देखते हैं ना, बहुत कुछ करता है बंदर यहां पर, और उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़े गर्व से चलता भी है। इसी तरह इस जगत में जो भी हम लोग कुछ विजय प्राप्त कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उससे अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सच्ची विजय नहीं है। सच्ची विजय है आंतरिक युद्ध को जीतना, अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। जिस व्यक्ति ने वो विजय प्राप्त कर ली, फिर उसके लिए दुनिया के युद्धों को जीतना कोई कष्ट नहीं रह जाता। जब अर्जुन ने आंतरिक युद्ध जीत लिया कृष्ण की कृपा से, तो अर्जुन के लिए बाहर का युद्ध जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो द्वैत होते हैं, द्वंद होते हैं, इन अवस्था में भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए, ये भागवत के कई उदाहरणों से हम लोग सीखते हैं। जब जीवन में द्वंद आए, समझ नहीं आए कि क्या सही है क्या गलत है क्या करना है, जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी, अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया उसके सामने, अर्जुन ने वचन दिया था पकड़कर लाऊंगा। अश्वत्थामा को लाया गया बंधा हुआ है एक पशु की तरह। द्रौपदी ने जब देखा तो उसके लिए द्वंद था, एक तरफ उसकी वो भावना थी, वो कष्ट था जो उसके पुत्रों के मरने से उसे हो रहा था, और उसको देने वाला था ये अश्वत्थामा। दूसरी तरफ वो अपने गुरु का स्मरण कर रही थी, द्रोणाचार्य का, और उनका प्रतिनिधि था ये अश्वत्थामा। तो द्रौपदी के लिए द्वंद था कि क्या मैं अपनी भावनाओं को श्रेष्ठता दूं और इसको मरने दूं, या मैं सच्चे धर्म को श्रेष्ठता दूं और इसकी रक्षा करूं। कठिन था द्रौपदी के लिए, लेकिन द्रौपदी ने निर्णय लिया और कहा इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु के समान है, और मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मुझे हो रहा है वो कृपी को हो, इसकी माता को, ये भक्त है। अगर जीवन में खुद भी कष्ट है तो कभी दूसरों के लिए कष्ट नहीं लेना। सुनीति, बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में है सुनीति का, ध्रुव महाराज की माता। जब ध्रुव महाराज को धक्का मार दिया, हटा दिया गोद से सुरुचि ने, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, अधिकार नहीं है तुम्हें इस गोद में बैठने का, बड़े दुखी हुए, उस दुख में माता के पास आए और उन्होंने सारा वृत्तांत जब बताया, अन्यों ने भी आकर बताया सुनीति को क्या हुआ। भागवत में वर्णन है सुनीति क्रोध से जलने लगी, अच्छा नहीं लगा सुनीति को, ऐसा नहीं था कि सुनीति बड़ी शांत थी, क्रोध से जल रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। आप सोचिए ऐसी अवस्था जहां वो करना चाहे कुछ नहीं कर सकती, इतना कष्ट अभी तक अपने ऊपर था, आज अपने पुत्र के ऊपर आ गया है, बहुत क्रोध में थी। लेकिन उपदेश क्या दिए सुनीति ने, हालांकि वो क्रोध में थी, उस समय एक तरफ था उसका क्रोध, उसकी भावनाएं, दूसरे तरफ था अपने बच्चे का भविष्य। सुनीति क्या उपदेश देती है ऐसे समय में, देखिए भक्तों को कैसे होना चाहिए। उस क्रोध में, उस जलन में उन्होंने ध्रुव से यह नहीं कहा बदला लेना चाहिए तुम्हें, छोड़ना नहीं चाहिए, जाओ शक्ति हासिल करो और अपने पिता पर आक्रमण करो। सुनीति ने कहा, बहुत सुंदर उपदेश दिए सुनीति ने, पहला उपदेश सुनीति ने दिया उस क्रोध की भावना में भी सुनीति ने उपदेश दिया ध्रुव महाराज को, कभी किसी के लिए अमंगल नहीं सोचना, पहला उपदेश वो देती, कभी किसी के लिए अमंगल नहीं सोचना। दूसरा उपदेश वो देती है कि जो व्यक्ति दूसरे के कष्ट देना चाहता है, दूसरे को दुख देना चाहता है, वो खुद उस दुख का झेलता है, इसलिए कभी दूसरों को दुख नहीं देना। देखिए कितनी सुंदर बात है भागवत के, इसीलिए हमने कहा हर श्लोक हमें प्रेरणा देता है। तो सुनीति ने कहा दूसरों को कभी दुख नहीं देना, क्योंकि दूसरों को दोगे तो केवल कष्ट होगा जीवन में। और फिर वो कहती हैं कि अगर थोड़ा भी द्वेष तुम्हारे हृदय में है तो उसको त्याग दो, ये द्वेष का भाव पूर्ण रूप से त्याग दो। देखिए ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया 6 महीने में, थैंक यू, धन्यवाद, ऐसा होता ही है, हमारे कई बार कहने पर भी बजना ही है। तो ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया केवल 6 महीने में, किस लिए, इन उपदेशों के आधार पर, क्योंकि उनकी माता उनकी गुरु बनी। और क्या उपदेश दे रही है, किसी के लिए अमंगल नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें फिर कष्ट सहना पड़ेगा, किसी को कष्ट नहीं देना जीवन में। शायद इनको कोई समझाए कि वो साइलेंट कैसे रखते हैं। तो किसी को भी आप दुख नहीं देना, और तीसरी चीज, अभी अभी हम बता रहे हैं किसी को दुख नहीं देना, तीसरी चीज बहुत सुंदर वो बता रहे हैं कि द्वेष हृदय से निकाल दीजिए। अगर द्वेष है तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस भावना में जहां आप दूसरों के लिए केवल मंगल सोच रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, अशुभ नहीं सोच रहे, दूसरों को कष्ट देने की भावना नहीं है और फिर हृदय में द्वेष नहीं है, भगवान की भक्ति करो। ये चौथा संदेश दिया सुनीति ने। और फिर उस संदेश के बाद वो कहती हैं, ऐसी भावना में तुम भगवान की शरण लो। तो देखिए सुनीति हालांकि खुद इतने कष्ट में, क्रोध में जल रही थी, द्वैत था उसके जीवन में, लेकिन फिर भी उसने भावना सही प्रकट की। तो हमें इन सब से सीखना चाहिए कि जब द्वंद आए, और द्वंद कैसे आते हैं, भगवान देते हैं, किस आधार पर, हमारी बुद्धि के आधार पर। हमारी बुद्धि कहां लगी हुई है इस समय? हमारी बुद्धि इस समय लगी हुई है कुछ करके दिखाना है, कुछ जीतना है, वो बंदर की तरह। बंदर देखिए कभी भी बैठता नहीं, उसको कुछ करके दिखाना है। तो हम सबकी भी वही भावना है, कुछ करके दिखाना है। तो भगवान ऐसी बुद्धि वालों को ये द्वैत देते हैं। तो ये द्वैत मन में आता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आकर्षण है, द्वैत किससे उत्पन्न है? माया से आकर्षण है। तो कभी कभी मन में विचार आता है कि क्या माया भगवान से अधिक आकर्षक है? है तो भगवान की शक्ति माया, भगवान से ज्यादा आकर्षक तो हो नहीं सकती। लेकिन दिखाई क्या देता है कि हम सब आकर्षित किससे हैं, कृष्ण से या माया से? आप लोग बोलने में भी घबरा रहे हैं, लग बोले माया से इतना डरते हैं कि बोलने में भी घबरा रहे हैं कि हम माया से आकर्षित हैं। हैं हम लोग आकर्षित माया से, है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं है कि माया ज्यादा आकर्षक है और कृष्ण आकर्षक, कृष्ण सर्व आकर्षक है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि भक्ति में आकर भी, नाम जप करके भी, सेवा करके भी, हमारा आकर्षण अभी भी इस भौतिक जगत के चीजों के लिए बना? और जब तक इस जगत में आ सकती है, द्वैत बना रहेगा, ये द्वंद बना रहेगा, सुख और दुख की कामना बनी रहेगी, जीत पराजय की भावना बनी रहेगी, लाभ हानि की भावना बनी रहेगी। तो इसीलिए ये जो आसक्तियां त्यागने के लिए, तो कैसे हो सकता है कि माया इतनी शक्तिशाली है? लगता तो यही है। हम लोग कितना सुनते हैं कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति आकर्षण, बस भागवतम तक लहता है, भागवतम सुनते हैं तो लगता है एकदम सही, आज से जीवन समर्पण, कुछ नहीं, कितना बढ़िया कहा प्रभु जी ने। और जैसे ही बाहर जाते हैं, सारा आकर्षण माया का, सारी चिंताएं शुरू हो जाती हैं, भूल जाते हैं अगले दिन भागवतम तक। फिर भी लाभ ये है कि कम से कम एक घंटा तो माया से परे रहते हैं, वो भी कुछ लोग नहीं रह पाते, वो अलग बात है, लेकिन प्रयास रहता है। तो इसीलिए क्या क्या माया ज्यादा आकर्षक है? नहीं, माया भगवान की शक्ति है, माया भगवान को ढक नहीं सकती। जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य को कभी कभी बादल ढक देता है, बादल आ जाते हैं, हम लोग सूर्य नहीं देख पाते। तो इस अवस्था में नीचे रहकर हमें पता चलता है कि सूर्य ढका हुआ है बादल से, लेकिन आप केवल प्लेन से ऊपर जाइए, तो जैसे ही ऊपर जाते हैं प्लेन में, तो दिखाई देता है कि सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, सूर्य तो वैसे ही है, बादल नीचे हैं, और बादल बहुत छोटे से हैं, जिन्होंने हमें यहां से दिक्कत लगता है पूरा ढक गया, बादल बहुत छोटे होते हैं, ऊपर से पता चलता है, और बहुत सारे बादल हैं कई कई जगहों पर फैले हुए, लेकिन सूर्य उसको कोई ढक नहीं सकता, उसकी किरणें आती ही रहती, ये जब हम ऊपर जाते तब पता चलता है। इसी तरह जब तक हमारी चेतना इन निम्न चीजों में फंसी हुई है, भौतिक भोगों में फंसी हुई है, हमें लगता है माया आकर्षक है, बादल ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब चेतना को ऊपर उठाया जाता है, जिस मार्ग पे हम लगे हैं उसी मार्ग के द्वारा, तब हमें समझ में आता है कि भगवान को कोई ढक नहीं सकता, कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि माया बहुत तुच्छ है उनके सामने। लेकिन ये भावना कब आती है व्यक्ति के हृदय में? जब चेतना को शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए भक्त के जीवन में ये जो द्वैत भाव है इसको दूर करना चाहिए। ये यहां का संदेश हम इस श्लोक से, एक संदेश, बहुत से और श्लोक संदेश हैं, एक संदेश हमें ये प्राप्त होता है कि हम केवल, जैसे यहां कहा गया, यथा रज्जु खंडह सर्पादि धियां, हमारी बुद्धि को लगता है कि सर्प है वो रस्सी, तो इसी तरह हमें ये लगता है कि इस जगत में केवल आनंद है कुछ नहीं, आनंद हो कैसे सकता है इस जगत में। और इसीलिए द्वैत से परे जाने का एक मार्ग है सुख का योजना बनाना छोड़ दीजिए। जब तक इस जगत में सुख की योजना बनाते रहेंगे केवल कष्ट होगा, प्रहलाद महाराज समझाते हैं। तो सुख की योजना ही छोड़ दीजिए। कहां सुख की योजना बना रहे हैं हम? दुखालयम अशाश्वतम, दुख के भंडार में रहते हुए हम सुख की योजना बना रहे हैं। छोड़ देना चाहिए, सुख मिलेगा जब इसके बाहर जाएंगे। तो क्या मार्ग है इन द्वंद्वों के परे जाने का? ऐसी स्थिति जब हो, जैसे हमने उदाहरण दिए सुनीति की तरह, जहां वो अपने पुत्र को कह सकती थी विरोधी बनो, लेकिन उसने सही पथ चुना। द्रौपदी जहां कह सकती थी मार डालो अश्वत्थामा को, उसने सही पथ चुना। अर्जुन जब भगवद्गीता के प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन, उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये क्या लाभ है? और कितने अच्छे कारण दिए अर्जुन ने, क्या लाभ है जरा सी भूमि के लिए, और ऐसी भूमि जो मेरे गुरुजनों के खून से सनी होगी, मुझे नहीं चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, अर्जुन कितना बढ़िया व्यक्ति है, कितना साधु व्यक्ति है। प्रभुपाद लिखते भी हैं कि साधु लक्षण है, लेकिन भगवान उसको नकार देते। अर्जुन दुविधा में था कि इसको चुने या इसको चुने, युद्ध करें या भाग जाए, तो उसने भगवान की शरण ली। तो हमारे लिए जब दुविधा हो जीवन में, द्वैत हो, दो राहे हो, तो ऐसी दुविधा में हम कैसे सही मार्ग को चुन सकते हैं? पहला कार्य हमें करना चाहिए कि गुरु के आदेशों के पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्त है वो हमें मुक्ति का मार्ग दिखला सकता है, जो खुद ही फंसा हुआ है वो हमें मुक्ति का मार्ग क्या दिखलाएगा। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन हमें बड़ी कड़ाई से करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें अपनी जो आदत है, जो बनी हुई है, उनको बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग कभी कभी जिस भाव में हैं, जिस आनंद को खोज रहे हैं, भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो उससे परे जाने का कम से कम उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रयास तो होना चाहिए। कभी कभी तो हम लोग प्रयास ही नहीं करते, प्रयास नहीं करना चाहते बचने का। जैसे एक उदाहरण है कि एक बार एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, तो नदी पार कर रहा था नाव से, और उसने सोचा कि ये व्यक्ति पैसा बहुत मांगता है, तो मैं थोड़ा सा अपना 25 पैसा निकाल के रख लेता हूँ, जैसे ही नाव से उतरूंगा इसको देकर चला जाऊंगा। उसने हाथ में 25 पैसा रखा, नाव थोड़ी सी हिली, 25 पैसा नीचे चला गया। बड़ा कंजूस आदमी था, उसका तो हृदय टूट गया कि कैसे गिर गया, तो वो कूद गया पानी में 25 पैसे लेने के लिए, लेकिन भूल गया कि स्विमिंग आती नहीं थी उसको, तो अब कूद तो गया लेकिन डूब रहा है, और डूब रहा है उस समय उसका केवल हाथ पांव मार रहा है। तो नाव में कोने में बैठे हुए एक आदमी ने जल्दी से कहा, लाओ 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 अपना हाथ दो, अपना हाथ दो जल्दी। उसने नहीं दिया, तो बड़ा आश्चर्य की बात। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, बैठा हुआ था, कि भैया बड़ा कंजूस आदमी है, इससे मांगो मत, इसको कहो मेरा हाथ लो। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, डूब रहा था, अरे मेरा हाथ लो, मेरा हाथ पकड़ो। उसने तुरंत पकड़ लिया हाथ। तो ये हमारी भावना, बदलना नहीं चाहते। मरते मरते भी जब कहा कि हाथ दो, बोले नहीं हाथ नहीं दूंगा। तो ये भावनाएं, या फिर वो बड़ी प्रसिद्ध कथा जो हम लोग सुनते हैं कि दो व्यक्तियों में विवाद हो गया कि इस चीज को कैंची से काटा जाए या चाकू से, और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में बड़ा जोर से झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को पानी में फेंक दिया, तो जो कैंची का कह रहा था वो पानी में गिर गया, मर रहा था, डूब रहा था, लेकिन डूबते डूबते भी हाथ ऊपर करके ऐसे कर रहा है। तो हम अपने अपने जो हमारे विचार हैं उनको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। भक्ति में आते हैं, सुनते हैं सब कुछ कि कैसे हमें सब त्यागना चाहिए, लेकिन उन विचारों को पकड़े रहेंगे तो दुविधा से बाहर नहीं निकलेंगे। और विचारों को बदलना है किस तरह से, हमें चीजों को देखने की दृष्टि बदलनी है, चीजें नहीं बदलनी है। हम दुनिया की स्थिति बदल नहीं सकते, केवल अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। सही है ना? अब सारी दुनिया को बदलने का प्रयास कीजिए, नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दृष्टि बदल लें, दुनिया बदल जाती है। जैसे एक बार एक राजा गया बाहर घूमने के लिए, वापस आया, उसने मंत्री को बुलाया और उसने कहा कि सारी सड़कों पर रबर लगवा दो। तो मंत्री ने कहा, महाराज सारी सड़कों पर रबर क्या बात है, पूरे राज्य की? उन्होंने कहा, मैं अभी गया था तो मेरे पांव में पत्थर चुभ रहे थे, पत्थर नहीं चुभने चाहिए सारी सड़कों पर। तो मंत्री ने कहा, अगर आज्ञा हो तो कुछ कहूं? बोले कहो। बोले महाराज आप अपनी चप्पल पहन लीजिए ना, अगर आप पांव में चप्पल पहन लेंगे तो सारी सड़कों पर रबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हम दुनिया को बदलने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अपनी दृष्टि बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है स्थितियों को देखने का। जैसे एक बार एक गधा था, वो कुएं में गिर गया, खाली कुआं था, सूखा कुआं, उसमें गिर गया। तो उसके मालिक ने सोचा, वैसे भी बूढ़ा हो गया, अब इसको पूरा बाहर निकालना, मेहनत करना, इसकी यहीं पर कब्र बना देते हैं, वैसे भी मरने वाला है। तो उन्होंने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू किया। अब आप सोचिए कि आप कुएं में गिरे हुए, ऊपर से कोई मिट्टी डाल रहा है आपको भरने के लिए, क्या होगा आपके भावना? तो इस गधे ने भी सोचा, तो ये मिट्टी आ रही है, लेकिन उसने उसको दूसरी तरह से देखा। जैसे जैसे मिट्टी गिर रही थी तो गधा जो था थोड़ा सा ऊपर आ रहा था उस मिट्टी पर, मिट्टी आती थी फिर ऊपर चढ़ जाता, और मिट्टी आती थी ऊपर चढ़, तो धीरे 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 मिट्टी गिरती गई और गधा ऊपर आता गया और इस तरह से बाहर आ गया। इसी तरह हमें कम से कम वो गधा बन जाना चाहिए कि जब स्थितियां हो हमारे विपरीत तो उनको कैसे ऊपर जाने का मार्ग बनाए, विपरीत स्थितियों में दुखी नहीं हो जाएं कि हाय हाय क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, 15 साल से वृंदावन में रहकर जप कर रहा हूं फिर भी ये स्थिति है। कोई चिंता नहीं, स्थितियों को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ये एक भक्त का भाव होना चाहिए। तो इसीलिए हम स्थितियों को बदलें, स्थितियों को दृष्टि देखने के भाव को बदलें, जिससे स्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं और हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकें। तो ये जो दुविधा का वर्णन यहां पर हुआ था, द्वैत का वर्णन हुआ था जिस श्लोक में, वो किसके लिए हुआ है? सम विषम मति नाम। सम मतलब जिनकी बहुत अच्छी मति है, मति यानी बुद्धि, और जिनकी विषम बुद्धि है। तो इस मति को शुद्ध करने का लाभ अर्थ क्या है या मार्ग क्या है, भीष्म देव सिखलाते हैं। भीष्म देव जिस समय अपना देह छोड़ रहे थे, हम सब जानते हैं भागवत के पहले स्कंद में आता है, तो भीष्म देव बहुत दिनों तक बाणों की शैया पर रहे, करीब 53 दिन बाणों की शैया पर रहे भीष्म देव, जिस दिन वो गिरे थे और उससे लेकर जब उन्होंने देह छोड़ा। तो इस बीच में बहुत से लोग उनके पास आए, कृष्ण भी लेकर आए अंत में, विशेषतः युधिष्ठिर को, और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद फिर अंत में भागवत में वर्णन है कि वो शांत हो गए और फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की। और उनकी पहली प्रार्थना में ही वो कहते हैं कि ये जो मेरी मति है, या एक कोई समझाते हैं कि भीष्म देव की एक पुत्री थी और उन पुत्री का विवाह उन्होंने कृष्ण से कर दिया था, तो कौन पुत्री थी? मति, बुद्धि। तो वहां अपनी प्रार्थनाओं में वो कहते हैं, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति, मेरी बुद्धि आज तक तृष्णा में लगी हुई थी, ऐसी चीजों के पीछे भाग रही थी जो थे ही नहीं। तृष्णा इस जगत में उसको कहते हैं कि जब हम कोई चीज है नहीं उसके पीछे भागते हैं। लेकिन अब ये मति आप में लगाना चाहता हूं, आपके चरणों में लगाना चाहता हूं। तो इसीलिए सही मार्ग है हम कृष्ण का आश्रय लें, कृष्ण से प्रार्थना करें। जब दुविधा हो तो जाइए राधा श्याम सुंदर के सामने, कृष्ण बलराम के सामने, और तीव्रता से प्रार्थना कीजिए, सही मार्ग दिखलाइए और भगवान दिखलाएंगे। ये विश्वास हमें होना चाहिए, और अगर ये विश्वास नहीं है तो क्या लाभ है रोज भगवान के दर्शन करने का, अगर ये विश्वास नहीं है तो क्या लाभ है उनकी पूजा इत्यादि करने का। विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, समय हो रहा है, इस विषय पर तो बड़े विस्तार से होना चाहिए, जब भागवत हो तो एक घंटे का समय बढ़ा देना चाहिए। एक श्रद्धा कैसी होनी चाहिए हमें, हम लोग रोज भगवान के सामने खड़े होते हैं लेकिन विश्वास नहीं है कि भगवान हमसे बात कर सकते हैं। हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, कष्ट में आते हैं, बात करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया, बहुत प्रयास कर लिया, बारिश नहीं हो रही है, अब तो ऐसा हो गया कि किसानों को मरने की स्थिति आ गई। तो एक भक्त ने कहा कि ठीक है, काम कीजिए, आप सब आइए, हम लोग सत्संग करेंगे, और विश्वास है मुझे सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी तो पानी आएगा, वर्षा होगी। तो सब लोग आए, क्योंकि जो हो रहा है ये ऐसा होता है ना, जो जो मार्ग मिले उसको स्वीकार करना है। सब लोग आ गए, और जब सब आए, सब ऐसे बैठे थे, मान लीजिए ऐसे सबको बलराम हॉल में बुलाया गया, सब बैठे थे और सब बातें कर रहे थे, क्या होगा पता नहीं, अब ये नहीं होगा वो नहीं, सब आए हैं सत्संग करने, ये इस भाव से कि सत्संग होगा तो वर्षा होगी, लेकिन चिंता क्या हो रही है, अरे क्या होगा कल, वहां नहीं होगा इत्यादि। तो उसने देखा भक्त ने कि सब अपनी अपनी बात में लगे, एक छोटी सी बच्ची वो भी आई, और वो छाता लेकर आई थी, छाता लेकर आई थी और खोलकर बैठी थी छाता, किस लिए, उसको विश्वास था कि सत्संग होगा, बारिश होगी तो जाने के समय छाता लगेगा, इसलिए लेकर आई थी, और किसी को विश्वास नहीं था इसलिए सब ऐसे ही आ गए थे। तो हमें ये सोचना है कि क्या हमारा छाता तैयार है या नहीं, ये विश्वास हमें होना चाहिए, और अगर ये विश्वास है तो भगवान इन दुविधाओं को जीवन से बड़ी आसानी से दूर कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी के कोई प्रश्न, एक प्रश्न, एक मिनट बाकी है केवल 9 बजे। समय बहुत है, हमें तो हमने लगा 9 बजे प्रसाद होता है शायद, यहाँ होता है, वी हैव इट, और उधर होता है। ठीक है, समय पर रहना भी। हाँ जी, आपका प्रश्न है, ओके, केवल एक प्रश्न लेंगे, अभी भी उसमें एक मिनट दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ आप प्रश्न बोल दीजिए, समय कब है, हम समझ बाकी सुन लिया, आगे का बोल दीजिए। अगर पानी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है और जीवन भक्ति के लिए अनिवार्य है तो करना चाहिए, क्योंकि नियम यह है कि जो कुछ भी भगवान प्राप्ति के लिए आवश्यक हो, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्, तो अगर वो भक्ति के लिए अनिवार्य है तो नीचे क्या, पृथ्वी खोद कर भी नीचे चले जाना चाहिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।